सबको आप जन्म देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और अंत में समाप्त करते हैं। भगवान कहेंगे नहीं, और लोग भी तो कुछ करते हैं, इसमें सहयोग करते हैं। तभी कहते हैं नहीं, त्वं माया समृत चेतसस्त्वं पश्यन्ति नाना न विपश्यत होये। जो आपकी माया से मोहित हैं वही लोग कहते हैं कि शिव जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, इंद्र भी करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझते हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है, केवल विष्णु ही सब कुछ कर रहा है। त्वं एक एवास सतः प्रसुप्ति स्तम संधानम तमनोग्रहस। केवल अकेले भगवान पोष रहे हैं वास्तव में। किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं चला रहा हूँ परिवार या देश या ये। क्या कोई चला रहा है? संसार चलाने के लिए सूर्य की बहुत ज़रूरत है। सूर्य से गर्मी मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो सूर्य की व्यवस्था में मनुष्यों का कितना हाथ है बताइए। कितना हाथ है? केवल प्रकाश लेने का अधिकार है ना, ले सकते हैं या ऊष्मा ले सकते हैं, लेकिन सूर्य में गर्मी बनी रहे, ये बेचारा ठंडा ना हो जाए, इसके लिए क्या यहाँ से पेट्रोल जाता है? किसी दिन भगवान ने नोटिस भेजे कि अब सूर्य की ऊष्मा समाप्त होने वाली है, इतना दिन मैं चलाया है, मनुष्य अब तुम लोग चलाओ। वो सारी दुनिया के लोग मीटिंग करें, रशिया के लोग और अमेरिका के, भारत के, सब जगह, ये भाई कुछ उपाय किया जाए, सूर्य ठंडा होने वाला है, ठंडा होने वाला है, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अरे वो तो छोड़ दीजिए, सूर्य ठंडा होने वाला है। ये कहा जाए कि सूर्य डूबता है, एक दिन रोको, डूबने मत। इतना दिन तो यह रूटीन चला ही, अब कुछ चेंज करना चाहिए। कहें सूर्य को आज दो घंटे के लिए रोको, हमारा कोई बहुत बड़ा काम है, प्रकाश की बहुत ज़रूरत है। क्या कोई सूर्य को रोक पाएगा? नहीं रोक सकता। बहुत तेज रफ्तार से सूर्य चलता है। किसकी व्यवस्था है? हवा चल रही है, हवा उत्पन्न करने में या पूर्वया हवा चलेगी कि पश्चिया चलेगी कि बिल्कुल गर्मी बढ़ जाएगी कि तूफान चलेगा, इसमें मनुष्यों का क्या है, क्या अधिकार है, क्या पावर है? मुझे ही पावर नहीं। मैंने देखा है बाईवान चलाते हैं तो कहते हैं प्रतिकूल हवा इतनी है, अनुकूल हवा इतनी, तो हमेशा अनुकूल हवा क्यों नहीं कर लेते? प्रतिकूल हवा में विमान कुछ कम गति से चलता है, जिधर जा रहा है विमान और उधर से ही हवा चल रही है तो गति कुछ अवरुद्ध होती, कम स्पीड से चलता है, और जिधर जाना है उसी की तरफ हवा जा रही है तो विमान की गति ही बढ़ती है। पर कोई शक्ति है मनुष्य में कि उसको विमान के अनुकूल बना ले हवा को? नहीं, नहीं बना सकते। तो इस तरह से वास्तव में देखा जाए तो एक एक जीव का पालन भगवान कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। जन्म भी वही दे रहे हैं, पाल रहे हैं, पोष रहे हैं। तमें कलेवा से सतह प्रसूति स्तम संधानम तमनुग्रह तम संधानम सम्यक निधीयते अस्मृति संधानम। जहाँ कोई चीज़ रखी जाता है प्रलय, और अनुग्रह करते पालन, प्रसूति करते जन्म, एक केवल आप जन्म देते हैं, केवल आप पोषते हैं और आप ही संहार करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तब भगवान कहते हैं ननु मां देवकी पुत्रम कथम एवं बद। अरे मैं देवकी का पुत्र हूँ और गर्भ में निवास कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना बड़ा बड़ा पद क्यों कह रहे हैं कि मैं पूरे विश्व की रचना कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं तो देवकी का पुत्र हूँ। तो देवता लोग कहते हैं हाँ हाँ, विभर्ष रूपा अवबोध आत्मा क्षमा ये लोग कैसे चराचर से सत्वपन्नानी सुखा वहानी सता में भद्राणी मुहूर् कलाना। हाँ हमें मालूम है कि आप कभी कभी इस विश्व की रक्षा के लिए अपना शरीर प्रकट करते हैं, किसी माँ के गर्भ से या जैसे तैसे आप प्रकट करते हैं। तो वास्तव में आप परब्रह्म हैं, भगवान हैं, जगदीश्वर हैं, और देवकी जी को ये आप सौभाग्य दिए हैं, उनके पुत्र रूप में जन्म ले रहे हैं। वास्तव में आप किसी के पुत्र नहीं हैं, सभी आपके पुत्र हैं। जब गीता में भगवान बोल रहे हैं सर्वजोनि सुखौंत मूर्तया संभवंत यह ताशम ब्रह्म महत्व निरहम विजय प्रदोपिता। यह बात यदि अर्जुन जा करके अपने मामा से वसुदेव जी से कहते, कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि मैं ही सबका बाप हूँ, और यह तो खुलम खुला सब लोग कहते थे कि कृष्ण ब्रह्मा जी के बाप हैं, सभी देवताओं के बाप हैं। तो क्या कोई अभी जाकर कह सकता था कि वसुदेव जी आप सावधान हो जाइए, कृष्ण कहते हैं कि वसुदेव जी हमारे पुत्र। वसुदेव जी इसको नहीं मान सकते थे, लेकिन वास्तविकता यही है कि सभी कृष्ण के पुत्र हैं। परंतु कृष्ण को यदि अपने पुत्र के रूप में प्यार करना चाहते हैं तो भगवान पुत्र बन जाते हैं, यदि उनका स्वरूप ही है, लेकिन तत्वतः उनसे सबका जन्म हुआ है, वही पालन करते हैं। और जब भगवान इस जगत में आते हैं तब भगवान का वह रूप असुरों के लिए बड़ा भयानक होता है, परंतु साधुओं के लिए सुखावहानी, सुख लाने वाला है। तो भगवान का दर्शन करते हैं, गुण गाते हैं, खुश होते हैं, और जो असुर हैं, दुष्ट हैं, उनके लिए भगवान का रूप बड़ा भयावह होता है, ये पसंद नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन बार बार आया है कि भगवान कृष्ण से विरोध करके, बल्कि उनको मारने के लिए राजाओं की मीटिंग जहाँ तहाँ चलती रहती थी। भगवान रुक्मिणी जी को जब ले गए तब राजा लोग आपस में लगे नारा बोलने, अरे हम लोगों के रहते रहते वो ग्वाला ले गया रुक्मिणी को, धिक्कार है हमारे बल और पौरुष को, वह वैसे हम लोगों के बीच से ले गया जैसे सिंहों के बीच से हरिण कुछ ले जाए, ऐसा बोल रहे। मतलब सब तो सिंह ही जुटे थे, शिशुपाल सिंह, जरासंध सिंह, सब सिंह ही थे, सिंहों के बीच से हरिण अपना भाग ले जाए, नहीं सिंहों के भाग को हरिण ले जाए, वैसे आया और रुक्मिणी को ले गया, धिक्कार धिक्कार। तब क्या किया जाए, वैसा करे अब युद्ध करे, और युद्ध करके रुक्मिणी को छीन रहे हैं, लौटा चलो 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 मारो। और श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वहाँ भगवान जब रुक्मिणी जी का हरण किए तो सुखदेव जी कहते हैं जैसे सिंह अपना भाग सियारों के बीच से ले जाए वैसे भगवान ले जाए। अच्छा, और वो लोग कहते हैं कि सिंहों के बीच से जैसे हरण ले जाए कुछ चीज़ वैसे लेकर के चला जाता, और वो भी सिंह सब धनुष बाण लिए हुए बैठे थे, हरण ले गए, वो लोग ये कहते हैं। अद्भुत अद्भुत अपना अपना कंसेप्शन है किसी के विषय में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सियारों के बीच से सिंह जैसे अपने भाग को ले जाए वैसे भगवान ले गए रुक्मिणी को। तो प्रश्न होता है सुखदेव गोस्वामी उन राजपूतों को सियार क्यों कह रहे थे, सियार इसलिए कह रहे थे जैसे सियार, एक सियार हुआ हुआ बोलता है तो दूसरे भी बोलते हैं हुआ हुआ, तो वे सब हुआ हुआ कर रहे थे, धरो धरो पकड़ो पकड़ो हुआ हुआ, लेकिन वो तो कृष्ण सिंह चले गए, हुआ 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 हमारे तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, कहाँ ले गया, अभी तो यही गया होगा, दौड़ो 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 दौड़ो। सब तो एक बार गिर गए थे रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखकर, तो मुकुट सीधा करने में, पोशाक पहनने में देर हुई, तब तक तो असली सिंह अपना भाग लेकर के निकल गया। और जिन लोग तैयार हुए लड़ने के लिए चले, तब तक जादुओं की सेना सामने खड़ी थी, भगवान जी लिविंग कर रहे थे। इसके बाद लोग बुरी तरह से मारे गए, धुआं हुआ नहीं करते तो चुपचाप हो गए होता नहीं, बहुत धुआं हुआ करते। वास्तव में वो लोग जब बोले होंगे ले गया हुआ हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी को याद आ रहा है सियार बोल रहे हैं। ये बोल कर करेंगे क्या, मान लीजिए सिंह कोई चीज लेकर के चला हो किसी पशु को मार करके अपना भाग, और हजारों सियार हुआ हुआ करें उसको देख करके, तो क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं करता, उसके निकट नहीं जा सकते। ऐसे ही सियार लोग बोल रहे हैं। मैं किस बात पर एक कथा ला दिया, लिंक बन गया। तमे कैवास सतह को सुतिस्तम सन निधान तमे ग्रह सन्माय या समृद्ध ये विभर्ष रूपाण अवबोध आत्मा क्षेमाय लोक सचरा चरस्य। तो मैं यह कह रहा हूँ कि भगवान इस विश्व की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, विविध रूप धारण करते हैं और वे अवबोध है आत्मा, उनका स्वरूप अवबोध है, ज्ञानिक मूर्ति हैं, चिदघन हैं। तो यह बात मैं कह रहा था कि भगवान के विषय में अनेक प्रकार के कंसेप्शन होते हैं, विचार होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य जो बोलते हैं कृष्ण के विषय में वही परफेक्ट है, वही ठीक है। तो भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं, किसी को स्वीकार करते हैं अपने माता पिता के रूप में, और वे जीव बहुत ही उच्च कोटि के साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, जो भगवान का भजन पुत्र भाव से करते हैं। कृष्ण हमारे पुत्र हैं, हम उनकी माँ हैं, हम पिता हैं, तो भगवान ऐसा सुयोग देते हैं। हाँ, ये बोल रहा था कि भगवान का जो स्वरूप है वो खलों के लिए बहुत भयावह होता है। हाँ, यहाँ मैं बोल रहा था कि भगवान कृष्ण जब थे इस पृथ्वी पर तो उनके विरुद्ध ज़्यादा मीटिंग चलती थी। जहाँ तक श्रीकुड़ी का हरण किया तो उसके बाद मीटिंग चली, और राजा लोग यही पहला प्रस्ताव डालते थे कृष्ण है कहाँ इस समय। जरासंध बहुत खुश रहता था, कहता था मैं तो उसको घर से निकाल दिया, उसके जन्मभूमि से भगा दिया, मथुरा से मेरे भाई से मथुरा छोड़कर भाग, तो उसका दामाद मथुरा में रहता था, कंस मार दिया गया, इसलिए जरासंध बहुत कुपित हो गया। वो प्रचार करता रहता था कि हमारे भय से कृष्ण भाग गया, अपना घर द्वार छोड़कर भाग गया, और ऐसा भागा कि पृथ्वी छोड़ करके एकदम समुद्र में रहता है, उधर गुजरात में जा करके समुद्र में रहता है, जमीन कहीं नहीं मिले उसको। भगवान की भी अद्भुत लीला है, मथुरा छोड़े तो एकाएक सिंधु के तीर चले गए। तो इसको कायरता कहते थे लोग, देखो इतना डर करके भाग गया, भाग गया, भाग तो गया, लेकिन इसके बाद पहली मुठभेड़ रुक्मिणी जी के विवाह में हुई इन लोगों से, और सब झूठ जितने हुड राजा थे, बदमाश थे, वो सब झूठे हुए थे कि कृष्ण आएगा जरूर। उन लोगों को पता चल गया था कि रुक्मिणी कृष्ण में आसक्त है, और विवाह तय हो गया था, खूब अच्छी तरह से बारात आ गई थी, शिशुपाल के साथ विवाह होना निश्चित हुआ था। यद्यपि भीष्मक जी अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन एक भाई था रुक्मिणी जी का, वो इन लोगों के पार्टी में था, मिला जुला था, और जरासंध कह दिया था कि नहीं, रुक्मिणी से विवाह शिशुपाल जी का होगा, उसे कोई नहीं कर सकता, मैं कराऊंगा ना, मैं हूँ ना। तो वो तो बुरी तरह से परास्त हो गया था। श्रीमद् भागवतम में यह वर्णन है कि जब भगवान ले गए रुक्मिणी जी को तो शिशुपाल बहुत खिन्न हो गया, बेचारा कई महीनों से आशा रखा होगा कि रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह होगा, और सब राजा लोग जुटे हुए थे, टेम्पोरोरी तंबू आदि लगा हुआ था, टेंट, लड़ने के लिए वो नहीं गया था, भगवान रुक्मिणी को ले गए तो वो तो बेचारा दूल्हा बनकर बैठा था, इसलिए वो लड़ने नहीं गया। बाद में कई लोग मारे गए, जरासंध भी हार करके भाग आया। जब भाग आया हार करके तो आया सबसे पहले, मैं जितने लोग बचे हैं वो तो जाओ गांव पर, जो मरे वो तो मरे, अब कौन विवाह की सोचने जाए, जो जीवित हैं जिनको घायल हुए हैं उनको अस्पताल भेजना, जीवित को घर पर भेजना, कैसे कैसे। तो आया तो शिशुपाल तो रो रहा था और बहुत क्रोध में भी था, विवाह मेरे साथ निश्चित हुआ और ऐसा कृष्ण किया। तो उस समय जरासंध का वाक्य दिया गया भागवत में, वो कहता है शिशुपाल जी आप इतनी छोटी बात के लिए और इतना खिन्न हो रहे हैं, अरे आप क्षत्रिय हैं और हार और जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, वास्तविक बात है शिषपाल जी कि ये विवाह जो है वो लिखा होता है प्रारब्ध में लला के, ये लिखा नहीं था, असली बात ये आपके ललाट में नहीं लिखा था रुक्मिणी से विवाह होना, तो इसलिए यह सोच करके आप शोक मत कीजिए, लिखा ही नहीं था तो क्या किया। यह दूसरी बात है, वो कहा कि लेकिन हमको इस बात का दुख है कि कृष्ण हम लोगों को इतना नीचा दिखा करके रुक्मिणी को लेगा, इस बात का सबसे ज़्यादा दुख। तो कहा तो यह भी तो कर्म की रेखा है ना, कब कौन व्यक्ति जीतेगा कब हारेगा सब लिखा हुआ है। आज जादुओं की छोटी सी सेना से हम लोग हार गए, ये लिखा हुआ था, उन लोगों के भाग में लिखा था कि जीतेंगे और हम लोगों के ललाट में लिखा था कि हारेंगे, तो ब्रह्मा जी के लेख से तो हम डर नहीं पाएंगे, तो लिख दिया था ब्रह्मा जी ने इसलिए वो लोग जीते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें बहुत बड़ा बल है। ये तो यही कृष्ण 17 बार हमको हराया था, 17 बार हारने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा और 18वीं बार उसको मथुरा से दूर कर दिया, खदेड़ दिया घर। तो एक बार हार गए तो आप इतना रो रहे हैं, यहाँ 17 बार का हारा हुआ आदमी हमको कोई इसके लिए चिंता नहीं, 17 बार हारा और मेरा इतना अपमान किया था बलराम, बलराम मुझे पकड़ पकड़ करके और दया करके छोड़ रहा था, कृष्ण कहता था छोड़ दीजिए हमारे मामा के ससुर हैं छोड़ दीजिए, और तिरस्कार करते थे कृष्ण, बलराम जी कहते थे नहीं इसको हम जान से मार देंगे, जान से वो हल से पकड़ लेते थे, हल से पकड़ कर और मुसल मारना चाहते थे, लेकिन भगवान कहते थे नहीं हमारे मामा के ससुर हैं छोड़ दीजिए वो चला जाता था रास्ते, और वो पहले ही हार में उसने निश्चय किया गया अब मैं तपस्या करूँगा अब राज नहीं करूँगा, तो दूसरे राजा लोग जूटे जो उसके अधीन रहते थे कहते थे अरे आप ये क्या निर्णय कर रहे हैं, तपस्या करना भजन करना ये ब्राह्मणों का काम है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, छी छी आपको तो धनुष बाण उठा करके राज्य करना चाहिए युद्ध करना चाहिए, ब्राह्मणों के तप करना माला लेकर के सब ब्राह्मण का काम है क्षत्रिय करना, तो क्षत्रियों के दृष्टि में ब्राह्मणों का काम एकदम कमजोर व्यक्ति का है। वो लोग कहते नहीं तपस्या आपके लिए ठीक नहीं, आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, कोई कहेगा कि शिषपाल ये जरा शंख जी माला उठा लिए और उधर जंगल में जाकर दाढ़ी बढ़ा करके तप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं लगेगा, तब लौट गया ठीक है, तो फिर दूसरी बार चढ़ाई किया हार गया फिर तपस्या करने जाने लगा, लेकिन 17 बार लोग समझा समझा करके इसको लाए और 18वीं बार जीत गए, भगवान रणछोड़ बन गए, युद्ध छोड़ने का उन्होंने नाटक किया, आवश्यक था युद्ध छोड़कर बाद में, उसी को दृष्टांत के रूप में जरासंध कह रहा है शिषपाल से कि 17 बार मेरी पराजय हुई थी, सारी सेना मार दी जाती थी लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, हमारा भाग्य काम किया 18वीं बार, 18वीं बार लिखा था ललाट में, ऐसे ही जादुओं के ललाट में लिखा है जीत रहे ना, जब हमारा समय आएगा तब देखिएगा हम किस तरह से जीतते हैं। और व्यक्ति को सम रहना चाहिए शिषपाल जी, संसार में कुछ मिले ठीक है ना मिले तब भी जो लिखा है होगा, इस तरह चिंता नहीं करनी चाहिए, हम तो बिल्कुल चिंता नहीं करते, तुम चिंता नहीं करते हो लेकिन बेचारा वो कितना महीने से मनोरथ रखा था उसको कितनी चिंता होती है। इस तरह से जरासंध समझाया करता था लेकिन हमेशा भगवान के विरुद्ध बोलता था, अनुकूल नहीं बोला, इसलिए भगवान ने जरासंध को फड़वा दिया भीमसेन से, जैसे लकड़ी फाड़ते हुए ऐसे तो बहुत बलवान व्यक्ति थे, जितने कृष्ण के विरोधी राजा थे वे सब इसको बहुत आदर करते थे मानते। तो मैं ये कह रहा था कृष्ण के विरुद्ध मीटिंग चलती रहती है कि चारों तरह से इधर उधर ऐसा है वैसा है ये है वो है, लेकिन भगवान तो सर्वत्र विजयी होते थे, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम जपता है वो सर्वत्र विजयी होगा, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्मा। संजय जी कह रहे हैं कि मेरी मति है, मैं भी कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, हे महाराज धृतराष्ट्र आप जो सोच रहे हैं कि आपके बेटा जीतेंगे ये सब मरेंगे, जिस पक्ष में अर्जुन है और कृष्ण है वही पक्ष जीतेगा, इसलिए अभी भी आज ही फोन करके युद्ध रोक किए। इनके संजय के कहने का आशय यह था, धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं कि जिस पक्ष में जोगेश्वर अर्जुन है, कृष्ण हैं और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय है, आपके पुत्रों के पक्ष में विजय नहीं, मरेंगे निश्चित। तो जिसको विजय चाहिए, श्री चाहिए, उस व्यक्ति को का कर्तव्य है कि वह भगवान कृष्ण का चरण ग्रहण करे, भगवान की शरण में हो, जैसे देवता लोग भगवान की शरण ले रहे हैं। तो जब भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं तो उस समय भगवान के रूप का लाखों कोटि कोटि लोग दर्शन करते हैं, और इतना दर्शन करते हैं अथवा सुनते हैं भगवान के सुंदर रूप लीला चरित्र, उनकी समाधि लग जाती है, इतना गाढ़ विनिवेश होता है भगवान में कि वे कब संसार से काम क्रोध लोभ आदि को जीत गए उनको पता भी नहीं चलता है। समाधि ना चेतसित वेशित चेत सही के इस भवसागर को जो एक समुद्र की तरह है उसको वे गोवत्स पदम कुर्वंती, गाय के बछड़े के खुर में भरा हुआ जल बना देते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है उसके लिए काम क्रोध लोभ का एक दुस्तर संसार सागर है, सागर जैसा, वह बछड़े के खुर में इकट्ठा हुए जल के बराबर है। कुर्वंती गोवत्स पदम कुर्वंती, अन्य साधनों से योग ज्ञान या तपस्या आदि से संसार सागर को पार करना कठिन है, अज्ञान को पार करना कठिन है, लेकिन उसी अज्ञान समुद्र को भगवान का भक्त वैसे पार कर जाता है जैसे कोई व्यक्ति रास्ता चलते हुए बछड़ों के खुर से बने गड्ढों को पार करता है। बरसात के दिन में जब माटी गीला हो जाता है और गौएं चलती हैं तो उनके खुर धंसते हैं जमीन में, धस धस करके छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं और गड्ढों में वर्षा का पानी भर जाता है। तो गौओं के साथ साथ कभी कभी गौओं के छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं तो उनके खुर तो और छोटे छोटे रहते, प्रारंभ में तो बकरी के बच्चे बकरी जैसे खुर रहेंगे, छोटे छोटे खुर। गोपद भी कहीं कहीं कहा गया है लेकिन यहाँ पर तो गोवत्स कुर्वंती गोवत्स पद, गाय के बछड़े का खुर बना देते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, ऐसा विशाल समुद्र है जिसमें बहुत नक्र घड़ियाल आदि भरे पड़े हैं भयावह जी, और पार करना है, और कोई व्यक्ति एक ऐसी नौका का आश्रय ले जिस पर चढ़ते ही समुद्र बछड़े का खुर बन जाए, उसमें पार क्या करना पड़ेगा। तब तो ऐसे कहने पर आदमी कहेगा कि इसमें तो नौका ही नहीं चलेगी, नौका चलाने की जरूरत क्या है, वहाँ रास्ता चलने वाला व्यक्ति तो एक बार में 10-20 खुर पार कर सकता है, कौन देखता है कि हम कितना खुर पार किए, इसको कोई गिनता नहीं। भक्त को ये फुर्सत नहीं रहती है देखने की कि हमारे जीवन के कितने दोष बीत गए, क्या हुए, कितना काम बीता, क्रोध बीता, अपने आप लांघता जाता है जो दूसरों के लिए दुस्तर है। कि कैसे कोई व्यक्ति संसार सागर को गोवत्स पद बना सकता है, भगवान के श्याम सुंदर रूप में मन को आसक्त करने पर। जब भगवान के रूप में मन आसक्त हो जाता है अथवा भगवान की लीला के रस में विभोर हो जाता है तब संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए आकर्षण का विषय नहीं रहती, कोई किसी वस्तु की तरफ उसका मन जा ही नहीं सकता। भगवान के रूप में मन विभोर हो जाए तो किसी के रूप में मन नहीं जा सकता। भगवान के लीला कथा में नाम में यदि रस की अनुभूति होने लगे तो और कोई बात सुनने की इच्छा नहीं करेगी, न बोलने की इच्छा करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में पद में कहते हैं, जो महिराम लागते मीठे तो नवरस खटरस अनरस हुए भय जाते सब सीठ। यदि वास्तव में राम मुझे मीठे लगने लगते मधुर लगते तो साहित्य के नव रस और भोजन के छव रस ये सब मेरे लिए सीटें हो जाती, कोई रस नहीं दे सकते थे। तभी तक इन बातों में रस की अनुभूति हो रही जब तक भगवान के नाम में रस नहीं मिल रहा है, भगवान के रूप में माना सकते नहीं। इसी बात को अरविंदाक्ष शब्द से कह रहे हैं, जो हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, आप परम सुंदर हैं,
आपका रूप त्रिभुवन में परम मनोहर है, तो आप इसीलिए अवतार लेते हैं कि संसार में लोग आपको देखें, आपके विषय में सुने, आपके विषय में बोले, जिससे उनका मन अपने आविष्ट हो जाए और संसार के दुख को पार कर जाए। यदि भगवान इस संसार में नहीं आएंगे, नहीं अवतार लेंगे, तो जीवों का दुख मिटेगा नहीं, तो किस में मन लगाएंगे? भगवान नहीं आएंगे तो बस लोग निराकार निराकार रट करके जीवन बिता रहे। जब भगवान नहीं दिखाई देते हैं तब कुछ लोग हल्ला करते हैं कि भगवान निराकार है, नहीं आने के कारण। इसीलिए भगवान कभी कभी आते हैं, देखो देखो मैं कैसा, मैं निराकार नहीं हूँ, निराकार हूँ। भगवान ये दिखाते हैं, मेरा ये स्वरूप, मेरा कृति पर ब्रह्म, नर बपुतार स्वरूप, ये भगवान का रूप है। तो कभी कभी वे जगत में आते हैं, तो स्वयं तो संसार सागर को पार कर ही जाते हैं। भक्त स्वयं समुत्तीर्य सुदुष्टरम जीवन भवानम भीम मदभ्र सौहृदा भवत पदाम भोरुना व मत्र ते निधाय जाता सदनुग्रहो भगवान। आपके भक्तजन, वरिष्ठ भक्तजन स्वयं तो संसार सागर को पार करते ही हैं, लेकिन इस संसार में वे वैष्णव परंपरा को स्थापित करते हैं, जिससे उस परंपरा में आ करके बाद में भी लोग पार होते रहेंगे। एक बात कही जा रही है कि आपके चरण पंकज नौका पर वे सवार होते हैं, आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। तो स्वयं समुत्तीर्य, स्वयं तो पार हो ही जाते हैं, लेकिन आपके चरण कमलों की नौका को इसी पार रह करके पार हो जाते हैं, यह कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भगवान के भक्त पहले आचार्य लोग पार हो गए भगवान के चरण कमलों की नौका से, तो नौका का एक स्वभाव है कि इस तट से लेकर के चलेंगे तो उस तट पर लग जाएगी, तो फिर पार होने वाले कैसे पार होंगे? लेकिन इसका उत्तर पहले ही आ गया है कि भगवान का चरण कमल एक ऐसी नौका है कि उस पर चढ़ते ही भवसागर बछड़े का खुर बन जाएगा, तो उस पर कहाँ गया? वो ऐसी नौका है कि उस पर चढ़िए बस भवसागर खत्म हो गया, खेना नहीं पड़ेगा, इसको मेहनत नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत तो चला जाए, ऐसा नहीं है कि अब जोर लगावे दौड़े कि कब पहुँचे कब पहुँचे, उसमें चलने की जरूरत नहीं, बस बैठिए, भगवान की शरण में हो जाने की जरूरत है। श्री कृष्ण शरण हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम।
बहुत तेज गति से गाड़ी जाती है, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते ही भवसागर सूख जाता है, तो नौका तो इसी तट पर रह गई, और जो आश्रय लेगा उसके लिए सूख जाएगा। तो आश्रय लेते रहें इसके लिए आचार्यगण वैष्णव परंपरा स्थापित करते हैं, शिष्य परंपरा, और फिर बाद में पार होते रहेंगे, पार होते रहेंगे। मतलब तो भगवान के रूप गुण लीला आदि को भागवत में लिखते हैं, शास्त्रों में लिखते हैं, जिसको पढ़ करके सुन करके लोग भगवान में मन लगाएंगे, भक्त बनेंगे, कीर्तन करेंगे, और इस तरह संसार के दुख समुद्र को पार कर जाएंगे। तो भगवान के अवतार के पीछे बहुत बड़ी योजना है जीवों को सुखी करने की, इसके लिए वे आते हैं। तो इस पर मान लीजिए भगवान कहेंगे, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो मेरा आश्रय तो नहीं लेते हैं, और वे लोग अपने को मुक्त मानते हैं, कुछ मायावादी जो भगवान के अंगों को चिन्मय नहीं समझते हैं, माया का विकार मानते हैं, उनके प्रति भगवान का संकेत है कि वे लोग तो मेरी शरण लेते नहीं हैं। तब देवता लोग कहते हैं, यमुने रविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्तोयस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृष्ण परम पदम ततः पतंत धोनागत विशुद्ध। वो अन्य देवता लोग, अन्य का अर्थ है भक्तेतरा, जो भक्त नहीं है भगवान के, अन्य जिनको भगवान के श्री विग्रह से, रूप से, नाम से, गुण से, लीला से प्रेम नहीं है, वे अन्य में। यन्ने रविंदाक्ष है कमल नयन, आप इतना सुंदर हैं लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख जड़ व्यक्ति हैं जो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वे हैं अन्य। अन्य यन्ने रविंदाक्ष विमुक्त मानिन, वे लोग अपने को विमुक्त मानते हैं, विमुक्त होते नहीं हैं, रहते नहीं हैं वास्तव, झूठ मूठ के मान लेते हैं कि हम मुक्त हैं। क्यों नहीं मुक्त होते हैं? क्योंकि तो यस्त भाव आप में उनका भाव अस्त रहता है, उदित नहीं रहता है, अर्थात आपसे वे प्रेम नहीं करते हैं, आपके प्रति स्नेह नहीं होता है, और इसलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है, गंदी रहती है। आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा पतन त्यधवाना धृतजुष्म दंगय, जो आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं, जो आपके सुंदर रूप का आदर नहीं करते हैं, ये ऊंचा परम पद पर चढ़ करके भी गिर जाते हैं। जो आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं, जो आपके सुंदर रूप का आदर नहीं करते हैं, ये ऊंचा परम पद पर चढ़ करके भी गिर जाते हैं। परम पदम का अर्थ है मोक्ष सन्निहितम तपह सत्कुलादि। मुक्त होने के लिए ये सब साधन हैं कुछ, जैसे तपस्या करना, उच्च कुल में जन्म लेना, वेद अध्ययन करना, वहाँ से व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन उच्च कुल में जन्म लेकर और तपस्या करके, वेद अध्ययन करके, जो व्यक्ति आपके सुंदर रूप से प्रेम नहीं करता, आपकी लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता, आपके नाम से प्रेम नहीं करता, तो वह गिर जाता है, अध नीचे गिरता है, नरक में जाता है, फिर दूसरी जगह जन्म। एक समय ऊँचे कुल में जन्म लिया, विद्या पढ़ा, तप किया, लेकिन भगवान के श्री विग्रह का आदर नहीं करने के कारण, चरण कमल का निरादर करने के कारण, उसको माया का विकार कहने के कारण गिर जाता है। भगवान आते हैं जगत में जीवों का हित करने के लिए, तो उनको आदर देना चाहिए, उनका भक्त बनना चाहिए। नहीं, कुछ लोग ये कहना चल रहे, ये तो मनुष्य है, थोड़ा तेजस्वी है, ये है, ऐसे बोलते हैं, आज तक बोलते हैं। गीता इसी जगत में है, लेकिन कृष्ण क्या गारंटी है कि भगवान, कुछ लोगों ने भगवान कहना चालू कर दिया, कुछ ऐसे कहते हैं भगवान कहना चालू कर दिया, वो भगवान कैसे है। अगर उसका एक व्यक्ति कह रहा था कृष्ण के बारे में अगर विचार करो तो ऐसा भगवान क्या, वो क्यों दूसरे के घर में मक्खन चुराएगा, ऐसा तो साधारण बच्चा भी नहीं करता है, अपने घर में जो बना है पका है खा लेता है, कि दूसरे के घर में तो चुरा चुरा कर खाएगा नहीं, तो दूसरे के घर में ये सब चुराने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है, ऐसे बोलते हैं। गोपियों का वस्त्र क्यों चुराया, तो ये क्यों किया, तो ये क्यों किया, तो पहले तो इन लीलाओं का रहस्य सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ लोग खुलम खुला कहते हैं, और कृष्ण एक समाज सुधारक थे, एक मनुष्य थे, हाँ वो थोड़ा बहुत अग्रसर मनुष्य थे, ऐसा कहा नहीं, भगवान मनुष्य नहीं थे, मनुष्य नहीं है भगवान, भगवान है। एक बार एक व्यक्ति हमसे इतना बहस करने लगा, तुम कृष्ण को भगवान कहते हो जिसको बहेलिया मार दिया था। ट्रेन में आ रहा था मैं, और इस समय वो बोला, मैं पूछा कि कहाँ से जान गए कि उनको बहेलिया मार दिया, पढ़े हैं तो नहीं, हम सुने इतना ही सुने हो, जब व्याध भगवान के चरण में बाण मारा तो क्या हुआ, वो बाण लगा चरण में, मैं उसको बताया, भागवत हाथ में लिया था, मैं बताया कि वह बाण भगवान के चरण में के स्पर्श नाम मात्र का किया, नैनम छिंदम शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को तो बाण नहीं काट सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकता, तो परमात्मा को कैसे अस्त्र काट देगा, जरा विचार करो। और उसके बाद स्पष्ट लिखा गया है कि व्याध आया और डर गया भगवान के रूप को देख करके, लगा प्रार्थना करने, तो भगवान ने कहा कि तुम डरो मत। और उसी समय विमान आया और वह गया स्वर्ग, भगवान ने उसको ये व्यवस्था दिया। इसके बाद भगवान वहीं पर रुके और उद्धव जी को उन्होंने उपदेश दिया। उद्धव जी को जब उपदेश दे करके पूरा कर लिया तो फिर ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए, नारद जी आए, इंद्र आए, सब आए, और कहने लगे कि अब देवताओं का कार्य हो चुका, पृथ्वी का भार दूर हो चुका, यदि आपकी इच्छा है तो आप अपने धाम लौट सकते हैं, लेकिन आपके चरणों में यही निवेदन है कि जब आप अपने धाम जाइए तो हमारे घरों से होकर होते हुए जाए, हमारे घर पर भी पधारिए, मतलब अमरावती में, कैलाश में, अलकापुरी में, इधर होते हुए जाइए, सभी देवता लोग भगवान से कहे कि सरकार तब हमारे घर में भी आई हमारे घर। तो भगवान जब जा रहे थे तो एक ही समय इतना विग्रह प्रकाशित किए कि प्रत्येक देवता के घर में उपस्थित थे। इसके बाद चले गए। तो भगवान तो ऐसे हैं, व्याध ने बाण मारा जरूर लेकिन हुआ क्या। भगवान तो इसी श्री विग्रह से अपने धाम में गए, स्पष्ट लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, इसी श्री विग्रह से गए। भगवान शरीर छोड़ ही नहीं सकते, जब शरीर और शरीरी में भेद हो तब न भगवान छोड़ेंगे, शरीर छोड़ ही नहीं सकते, ये तो पूर्ण आत्मा। लेकिन फिर भी लोग संशय करते हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कहते हैं कृष्ण बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए, लास्ट में उनकी 16,000 स्त्रियाँ छूट गई, ये हुआ। लेकिन भगवान स्वयं ही इस तरह से लीला किए, वह एक जादू था, जादुओं का युद्ध परस्पर, महाजादूगर भगवान का जादू था, कोई कहीं नहीं गया वास्तव में, सभी नित्य द्वारका में, अप्रकट द्वारका में उस समय रहे और आज भी हैं। भगवान के प्रिय जन कैसे उनका वध हो सकता था, जरा विचार कीजिए। अपने भक्त परीक्षित महाराज को भगवान गर्भ में नहीं मरने दिए, ब्रह्मास्त्र से नहीं मरने दिए, तो क्या वे प्रभु अपने परिकरों की रक्षा ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं कर सकते थे। लेकिन वे तो किए, ऊपर से केवल जादू दिखाया गया। इसमें से बहुत लोग जादू देखे होंगे, जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देता है, इसको जादू कहते हैं, नहीं है वो दिखाई। मैंने एक बार जादू देखा था, एक जादूगर अपने बच्चे से कहा कि शौच करो, तो वो शौच करने लगा तो इतना चांदी का सिक्का शौच कर दिया, ये बिल्कुल आँख से देखे ही बात कर रहा है। उस समय उम्र कम थी, हम सोचे कि अब तो ये धनी हो जाएगा, ये रखेगा। तो बाद में उसके साथ आए हुए एक व्यक्ति से जिज्ञासा कर रहे थे हम लोग, ये पैसा कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। इसके बाद वो बताया कि ये सब कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, तो जादू का यही मतलब होता है। वास्तव में एक पैसा नहीं था उसके पास उस चांदी का। स्पष्ट हमारे गाँव में ही ये घटना हुई थी, देखा था, बिल्कुल पैसा नहीं है और लगभग 6-7 किलो तक का वजन होगा, इतना पैसा सर्च कर दिया। वास्तव में सर्च नहीं हो रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैसा निकाल रहा है। कभी कभी बच्चे पैसे निकल जाते हैं तो वो पैसे को निकालते हैं, लेकिन जादू में तो ये दिखाया गया। जादू में जो परस्पर युद्ध हुआ प्रभास में, वह युद्ध नहीं हुआ, जादू था। ऐसा देखने में लगा कि कृतवर्मा और प्रद्युम्न में झगड़ा चालू हो गया और कृष्ण बलराम समझा रहे हैं, नहीं समझे बल्कि इनको ही गाली देने लगे। तो बलराम जी रोके प्रद्युम्न को, रुको रुको रुको, चलो गाली देते हैं, तुम उसका पक्ष कर रहे हो। तो दोनों भाई को इस तरह से बोले तो ये लोग इनका घास उखाड़ उखाड़ कर सबको अपने हाथ से मार कर ख़त्म कर। क्या भगवान कभी भी अपने परिकरों को, अपने भक्तों को इस तरह निर्ममता से मार सकते हैं, कभी संभव है, कोई कल्पना भी कर सकता है। जिनको पोसे थे पाले थे और उन्हीं को ऐसा वो मारे, लेकिन ये तो भगवान का जादू है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को भागवत सुना रहे थे तो ये सब पॉइंट पर बहुत ज़्यादा बताए हैं कि सब सिखाई ल प्रभु भागवत सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु भागवत सिद्धांत समझाए, कृष्ण की मौसल लीला और जो कुछ है इसका क्या रहस्य है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके समझाए। तो भगवान इस जगत में आते हैं तो लोग प्रेम करते हैं, भवसागर पार होते हैं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं पार नहीं होते, गिर जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं गिरते हैं। और सबसे बड़ा लाभ होता है भगवान के अवतार के बाद कि श्रवण गणन संस्मरण से चिंतन नामा निरूपाण से मंगलानी, भगवान के नाम रूप जो परम मंगलमय हैं इसको जीव सब गाते हैं, देवता तो गाते ही रहते हैं, मनुष्य गाते हैं, सुनते हैं, उनका मंगल होता है। देवता लोग बाद में कहते हैं कि आप हम लोगों के लिए बारम्बार अवतार लिए हैं, जैसे ब्राह्मण में अवतार लिए परशुराम जी के रूप में या वामन देव के रूप में, राजाओं में अवतार लिए पृथ्वी महाराज के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, नृसिंह के रूप में अवतार लिए, वराह के रूप में अवतार लिए, हंस के रूप में अवतार लिए, तो यह आपका स्वभाव है प्रभु, हम लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं, सदा आते रहते हैं, उसी तरह से इस बार आप स्वयं आए हुए हैं, तो हे जादवों में सर्वश्रेष्ठ हम लोग आपका नाम रखेंगे जदुत्तम, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। भगवान अभी गर्भ में हैं और जदुत्तम जादव शिरोमणि नाम ये देवता लोग देने लगे, हम आपकी वंदना करते हैं। फिर माता देवकी से देवता लोग कहे, देखे कि बेचारे खिन्न है कि जन्म लेने पर कंस मारेगा, तब ये लोग कहते हैं माँ तुम भयभीत मत हो, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान आए हैं, अन्य वो साधारण बच्चा नहीं आया है कि कंस मार देगा, कंस इसका दर्द नहीं करेगा, कंस को ये समझो कि अब मर ही चुका है, अरे 11 वर्ष में क्या है, 10-11 वर्ष के बाद मर जाएगा, तो कंस मर ही गया ऐसा समझो, अब कंस से भय मत करो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी क्या हम लोगों की रक्षा करेगा, सबकी रक्षा करेगा, पूरे विश्व की रक्षा करेगा, और माता देवकी की वंदना सभी कर रहे हैं। जो भगवान की माँ है तो उसकी वंदना क्यों नहीं करें, सब लोग वंदना कर रहे थे, ब्रह्मा जी शिव जी देवकी जी की वंदना कर रहे थे, भगवान गर्भ में है, भगवान की माँ है तो उसकी वंदना कर रहे थे, भगवान की वंदना कर रहे थे और देवकी जी की परिक्रमा किए सारे देवता, चूँकि उनके भीतर भगवान थे। और इसके बाद जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण इत्यादि कह रहे थे, आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, कोई दूसरा न सुने। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकेत किया कि तब चला जाए, भगवान के जन्म लेने का प्राकट्य होने का समय आ रहा है, तो देवता लोग निकल नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई चले चले सब लोग निकलिए अब चला जाए, तो देवताओं ने कहा, देवता लोग सोचने लगे कि हम लोगों को भेज करके लोग फिर कोई स्पेशल लीला देखेंगे, तो देवताओं ने कहा ठीक है चला जाए, आगे तो आप चलते हैं ना, तो इसीलिए ब्रह्मेशानो पूर्व भारत, ब्रह्मा और ईशान को आगे करके देवता लोग गए, तो लोग सोचे कि हम लोगों को भेज करके लोग फिर कोई नया आनंद लूटेंगे, तो हम लोग रहे, तो इसलिए ब्रह्मेशानो पूर्व धारा पूरा धाया मतलब आगे करके तब देवता लोग निकल गए। अब अजन्मा भगवान के जन्म का समय आ गया, सुखदेव गोस्वामी तृतीय अध्याय चालू करेंगे, प्रकृति का वर्णन करेंगे, भगवान के प्राकट्य के समय हवा कैसे चल रही थी, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश कैसा था, जल कैसा था, कमल कैसे खिले थे, देवताओं की क्या स्थिति थी, साधुओं की स्थिति क्या थी, दैत्यों की स्थिति, सब कुछ बहुत सुंदर हो गया था, केवल असुरों को छोड़ करके बाकी सबकी शोभा बढ़ गई थी, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। हरे कृष्ण जय
कृष्ण Thank you.
Oh, Thank you. हरे हरे।